ओम शांति। तो इस भट्टी की शुरुआत हम एक कवच से करेंगे। कौन सा कवच? ऊर्जा का कवच, ब्रह्मचर्य। इस विषय को शायद इससे पहले बहनों के सम्मुख हमने कभी नहीं लिया है। हमारे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है, जिसके विषय में हम बहुत सारी बातें जानते हैं, परंतु आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो संपूर्ण पवित्रता की जो इमारत है, उसकी जो आधारशिला है, ब्रह्मचर्य, उस पर करेंगे। बहुत बहुत समय पहले, दूसरी शताब्दी, विदेश में ईसाई धर्म में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। एक स्त्री है जिसका नाम होता है थेकला। थेकला, तो वो किसी युवक से प्रेम करती है। उसकी अपनी एक माँ है, और एक दिन अचानक खिड़की से वो एक संत की वाणी सुनती है। वो संत होता है सेंट पॉल, एपोजल पॉल, और वो पॉल जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते जाता है। वो कहता है, यदि भगवान का बनना है तो इस शरीर को अपवित्र नहीं करना। वो एक गीत गा रहा है, वो कहता है, ही हु शैल कम अन टू द लॉर्ड शैल रिमेन चेस्ट। वो जिसे भगवान के पास आना है उसे संपूर्ण पवित्र रहना पड़ेगा। तो ये जो थेकला होती है, 3 दिन 3 रात बस खिड़की पर बैठकर उस संत को सुनती रहती है, और अचानक उसके मन में संकल्प आता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मुझे भी तो प्रभु के द्वार पर जाना है, मैं भी आज से संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती हूँ, कंप्लीट चैस्टिटी। और जैसे ही उसका जो प्रेमी होता है और उसकी जो माँ होती है, उनको ये पता चलता है कि ये क्या हो गया, तो वो दोनों उसको बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, पर वो बिल्कुल नहीं मानती। तो इसके खिलाफ कंप्लेंट की जाती है उसके खिलाफ, और वो जो सड़क पर चलता हुआ सेंट पॉल होता है, सेंट पॉल के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगते हैं कि ये स्त्रियों को बिगाड़ रहा है, ये जो संत है क्राइस्ट के नाम पर हमारी स्त्रियों को, हमारी जो पत्नियां हैं उनको ब्रह्मचारी बना रहा है। तो दोनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, थेकला और सेंट पॉल, और उन्हें सेंट पॉल को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती है, बहुत सारे कोड़े मारे जाते हैं और उसको देश से निकाला दिया जाता है, देश निकाला। और जो थेकला होती है उसे सबके सामने जिंदा जलाने की सलाह। यह सारा वर्णन, जहां पर वर्णन है, बाइबल में नहीं है, पर एक्ट ऑफ पॉल एंड थेकला, इसमें इसका संपूर्ण वर्णन है कि सारा गांव, जन समुदाय एकत्र होता है, सूली बनाई जाती है, उसको बांध दिया जाता है और उसको जिंदा जलाया जाता है, इसलिए कि बाकी स्त्रियां सीख ले इससे, अगर ब्रह्मचर्य रही तो क्या होगा। परंतु दिखाया है कि जैसे ही उसे आग लगाई जाती है, अचानक मिराकल होता है, आकाश से एकदम से बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है, और वो सारी आग बुझ जाती है, मिराकुलस एस्केप, और वो वहां से निकल जाती है। फिर से वो सेंट पॉल को मिलती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। वो कहता है नहीं आओ, एक बार तो तुम बच गई, वो कहती नहीं, मुझे उसी मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो मार्ग है वो भगवान की ओर जाने वाला मार्ग है। वो कहता है तुम नहीं आओ मेरे साथ, बहुत खतरा है। टर्की की ये सारी बातें हैं। वो कहती है नहीं आऊंगी। फिर भी वो कहता है तुम एक काम करो, अपना भेष बदल दो, पुरुष का भेष धारण कर लो। और वो दोनों एक दूसरी जगह पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद भी वहां का एक पुरुष होता है अलेक्जेंडर, उसकी नजर उस पर पड़ती है और वो पहचान लेता है ये पुरुष नहीं स्त्री है। और दिखाया गया है कि वो उसका अपहरण करने का प्रयत्न करता है, परंतु थेकला जो होती है उसका सामना करती है बहुत बहादुरी से और उसको हरा भी देती है और सबके सामने लेके आ जाती है। तो वो जो अलेक्जेंडर रहता है वो डर जाता है, चला जाता है। परंतु वो बहुत प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है, वो सोचता है अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और वो फिर से ऐसे षड्यंत्र करता है कि थेकला को राजा के सम्मुख सजा सुनाई जाती है, और सजा इतनी जबरदस्त होती है कि अखाड़ा होता है और सारे लोग चारों तरफ से बैठे हुए, और उसको बीच में छोड़ दिया जाता है जहां पर जंगली जानवर शेर और शेरनियां हैं भूखे। पर वहां दिखाया है उसका निश्चय कि इस परीक्षा में भी वो जो शेरनी होती है वो वहां आ जाती है और उसकी रक्षा करती है। वो जो दूसरे भूखे शेर होते हैं उनको आक्रमण करने ही नहीं देती, वो शेरनी के कारण उसकी रक्षा होती है। और वहीं पर उसी सभा में दिखाया है वो, क्योंकि उसको हमेशा कोई गुरु चाहिए रहता है इसके लिए, वो सेंट पॉल, पर वहां वो सोचती अभी मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, वहां जो पानी होता है उसी पानी से स्वयं को वह नामकरण, जिसको क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म कैसे बाप्तिस्मा, कि इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आज से उसकी हो गई हूं, स्वयं ही स्वयं का राज्य अभिषेक जिसको कहेंगे बाप्तिस्मा, नामकरण, बैप्टिज्म सारी सभा के सामने। और फिर से उसका वहां से मिराकुलस एस्केप होता है, फिर से वहीं से ऐसा कुछ हो जाता है कि वो वहां से छूट जाती है और उसका आगे का जीवन वो रोम में आती है। वहां पर उसके अंदर जो पवित्रता की पावर होती है धीरे धीरे वो हीलिंग पावर बनती जाती है और लोग उसे धीरे धीरे सेंट थेकला के नाम से जानने लगे, जो कि आज भी रोमन कैथोलिक सेंट्स में बहुत ऊंचा नाम है। यहां तक कि दिखाया है बाद में वो एक गुफा में रहती है 72 इयर्स तक बात के, और जो भी उसके पास आता है उसमें उस पावर की वजह से ऐसी शक्ति आ जाती है, जो भी बीमार है उसको हाथ लगाते ही, या ऐसी शक्तियां आ जाती है कि वो सबको ठीक करने लगती है। परंतु जो गांव के डॉक्टर्स होते हैं उनको बहुत जलन होती है इसके वजह से, और उनको ये समझ में आता है ये जो पावर है हीलिंग पावर, इसका भी कारण इसका ब्रह्मचर्य है, चैस्टिटी है। तो ये भी दिखाया है कि वो बहुत सारे युवकों को भेजते हैं उसकी पवित्रता भंग करने के लिए। परंतु वहां एक तीसरा चमत्कार दिखाया है, जिस गुफा में वो होती है आज भी टर्की में वो गुफा है, वहां पर जैसे वो लोग आते हैं पत्थर की दीवार बीच में आ जाती है, पत्थर बहुत सारे गिरते हैं, एक नई गुफा तैयार हो जाती है और वहां से वह अदृश्य हो जाती है। जैसे भारत में दिखाया मीरा जो थी सशरीर विलीन हो गई, कितना सत्य है पता नहीं, चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु नहीं है, सशरीर चले गए, संत तुकाराम सशरीर चले गए, ये तीन उदाहरण भारत के हैं जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, शरीर के साथ चले गए। ये भक्ति की बातें हैं, सत्य उसमें ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, आत्मा तो शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। परंतु यहां ऐसी कहावत है कि थेकला, सेंट थेकला जिसे कहा जाता है, स शरीर, वो जो नया मार्ग बनता है वहां से जीसस क्राइस्ट में जाकर विलीन हो जाती है। जब भी पवित्रता की बात आती है, सेंट थेकला का नाम आता है। क्रिश्चियनिटी में बहुत दूसरी शताब्दी में, अभी अभी जीसस क्राइस्ट चला गया है, उसके बाद पुरुष तो बहुत सारे हुए हैं, सेंट पॉल, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, सेंट एसीसी, सेंट फ्रांसिस, सेंट जेवियर, पर पुरुष स्त्रियों में, और ऐसी स्त्री कि जिसने ब्रह्मचर्य को ही अपना जीवन बना लिया, कुछ भी हो जाए इतना उसको तड़पाया गया बीच बीच में, ऐसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है जो अत्याचार उस पर किए गए, परंतु वो इतनी दृढ़ रही। तो चाहे भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता बहुत ऊंची बात है, वो तो ब्रह्मा समान अवस्था है, ब्रह्माचर्य है, उस पे तो संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न, कल की भट्टी में जो हमने 21 बातें बताई थी रिट्रीट सेंटर पर, वो सारी की सारी बातें उसमें आ जाती है। परंतु आज हम चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य की सबसे पहले परिभाषा, जगदीश भाई जी ने 2-3 परिभाषाएं चिंतन करके निकाली है। ब्रह्मचर्य वह स्थिति है जिसको उन्होंने कहा ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म में स्थित जब आत्मा होती है, उसकी जो पवित्र अवस्था होती है, उस स्थिति का नाम है ब्रह्मचर्य। जो स्थिति आत्मा की ब्रह्म में होती है, परमधाम में होती है, निर्वाण में होती है, वह स्थिति का नाम है ब्रह्मचर्य। दूसरी ब्रह्मचर्य की परिभाषा है काम का अंश भी नहीं। काम विकार किसी भी समय में, किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में न आना, यह ब्रह्मचर्य है। किसी भी स्थान में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, ऑल प्लेसेस, ऑल टाइम, ऑल सर्कमस्टांसेस, जहां पर ब्रह्मचर्य की मुख्य रूप से 8 बातें हैं, उनमें से किसी एक बात का भी खंडन हो रहा है, अर्थात ब्रह्मचर्य का खंडन हो रहा है, और ये खंडन हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थान पर, कहीं पर भी ना हो, इसकी परिभाषा, इसको कहा जाएगा संपूर्ण या अखंड ब्रह्मचर्य। तीसरी परिभाषा ब्रह्मचर्य अर्थात संपूर्ण पवित्रता, क्योंकि ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्माचर्य भी है, इसलिए ब्रह्मचर्य की एक परिभाषा है संपूर्ण पवित्रता। ऐसी ये 3 परिभाषाएं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, यदि वो हो जाए तो जिसको ब्रह्मचर्य का खंडन कहा गया है, ऐसी 8 बातें। केवल अविवाहित रहना ब्रह्मचर्य नहीं है, या वास्तव में ब्रह्मचर्य का विवाह से कोई संबंध नहीं है। तो आज हम उन 8 बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, दर्शनम। दर्शनम अर्थात देखना। संसार भर में ब्रह्मचारी है, संसार भर में ब्रह्मचारिणियां है, संसार भर में फादर्स है, नंस है, बौद्ध भिक्षु है, उसमें भी फीमेल सन्यासिनी, तपस्विनी, साध्वी है, जैन धर्म में है, सभी धर्मों में है, और ये सारे जिन्होंने ब्रह्मचर्य को व्रत बनाया है परंतु पूरा अभी तक धारण नहीं किया है, वो अपनी जो दमित काम की भावना है उसकी तृप्ति देख कर करती है। एक दूसरे को देखकर। सन्यासियों के लिए कहा जाता है, यदि कोई स्त्री उसे दिख जाए और सहज दृष्टि चली जाए तो वो स्वाभाविक है, परंतु उसी को फिर से दोबारा मुड़कर देखना ये इच्छा है, तीसरी बार फिर से देखना वासना है। और जो नियम पुरुषों के लिए है वही नियम स्त्रियों के लिए भी है, देखना। बाबा ने कहा है ये देह क्या है, सांप, फुल स्टॉप। दूसरा महावाक्य बाबा का उसी मुरली में 71, देह में सांप में विष होता है। कुमारों से मुलाकात, इसलिए सभी कुमार ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद केवल और केवल मस्तक मणि को देखेंगे, देह को नहीं देखेंगे। अगर देखना ही है तो मणि को देखो, और यदि देखना ही है तो किसको देखो, इस देह के वास्तविक रूप को देखो, क्या है इस देह में। तुलसीदास पागल हो गया था, पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, वो एक लाश थी, उस पर बैठकर नदी पार की, तूफानी रात, कितना वेग होगा विकार का, परवाह नहीं की। जब घर पहुंचा तो दूसरे माले पर वो सांप लटका हुआ था, उसको पकड़कर अंदर गया, और वो पत्नी उसको क्या कहती है, उस एक वाक्य ने उसके मन में वैराग ला लिया। वो कहती है कि जितना प्यार तुम्हें इस देह से है यदि उतना ही राम से कर लो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। और तुरंत वो उसके ही देह में देखता है, क्या है देह, हड्डियां, मांस, मल और मूत्र से भरा हुआ है, यह है उसका वास्तविक स्वरूप। कौन सुंदर कौन असुंदर, ये जो सौंदर्य स्किन डिप, चमड़ी को उखेड़ के उखाड़ कर देखो क्या है वहां पर। सच्चा सौंदर्य देह में नहीं, यहां है। सबसे पहला खंडन जो है वो है देखकर। इसके लिए कोई भी हो, केवल और केवल मस्तक मणि को देखना, क्योंकि और कुछ यदि देखा तो आकर्षण हो सकता है। सीता को आकर्षण हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, आकर्षण। क्यों वो चली गई शोक वाटिका में, सात बातें हैं वहां पर। सबसे पहले तो उसने देखा और आकर्षण हुआ, दूसरा इच्छा हुई उसको पाने की, ये जो मृग है ये मुझे चाहिए, ये जो व्यक्ति है मुझे चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, फिर स्टूडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वासना उम्र की भाषा नहीं समझती, रंग को नहीं देखती, जिसमें अटैचमेंट हो गया वही चाहिए, चाहे वो कुछ करे या ना करे, बस चाहिए। सूक्ष्म लगाव वहां पर उत्पन्न होता है, ये भाई बहुत अच्छा है, उस अच्छा है में भी बहुत बड़ी माया छिपी हुई है, और यही चाहिए इसमें भी माया छिपी हुई है। काम के ही अंश है कामना। स्वयं को देखना है, मैं क्या देखती हूं, किसको देखती हूं, हाँ उसमें कोई विशेषता है, हाँ उसमें कोई कला है, हाँ उसके पास धन है, हाँ वो बहुत सेवा कर सकता है, परंतु वो आत्मा है, ये ना भूल जाए। हाँ उसमें बहुत कला है, बहुत सुंदर सब कुछ है, परंतु देने वाला कौन है उसको, आया ऊपर से है, ईश्वर प्रदत्त है सब। जैसे ये विस्मृति होती है, लगाव उत्पन्न हो जाता है, सूक्ष्म लगाव व्यक्तियों में, और ये काम और ये कामना ब्रह्मचर्य का खंडन है। तो सबसे पहली बात दर्शनम, दूसरा स्पर्शनम, स्पर्श करना, टच। गीता में लिखा है वो सारे सुख जो स्पर्श से उत्पन्न होते हैं अंततोगत्वा दुख में परिणित हो जाते हैं। वो सारे सुख जो स्पर्श से उत्पन्न हो रहे हैं, इंद्रिय इंद्रिय से मिल रही है और सुख का अनुभव हो रहा है, वो बाद में दुख हो जाएंगे। आंसू आ रहे हैं, किसी कंधे की तो तलाश नहीं है जिस पर रख कर रोए। अगर मिल जाए तो अच्छा लगता है। स्थूल या सूक्ष्म, कंधा जिस पर रोया जाए, आधार। स्पर्श करना केवल हाथों से स्पर्श करना नहीं है, दृष्टि से और संकल्प से भी स्पर्श करना है। हमारी हॉस्पिटल में ओपीडी में जैन साध्वी आती है, पेशेंट्स, जो पेशेंट का चेयर है वहां पर बैठती नहीं है, अगर वहां भाई बैठा हो तो खड़ी रहेगी, बैठेगी नहीं। उनकी अपनी धारणाएं। और क्यों ये धारणाएं बनी है? क्योंकि संसार भर में देखा गया है जितने तपस्वी हुए हैं कैसे वो गिरे हैं। यही स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी की दोस्ती, नाम सेवा का, अंदर कामनाएं सूक्ष्म जो उनको भी नहीं पता क्या है, स्पर्श। हमारा स्पर्श इतना पवित्र हो जैसे मां का। जो भी है सभी बच्चे हैं, मां स्वरूप में ही देखना सारे स्टूडेंट्स को, चाहे कितना भी बुजुर्ग हो। और यदि कोई प्रयत्न करे इस तन को स्पर्श करने का, वहां विकराल रूप धारण करना है। यह देह अनटच्ड रहे, जगदीश भाई सुनाया करते थे, एक स्त्री पानी भर रही है कुएं में, कुएं से, और वहां एक युवक आ जाता है। वो कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कहती है पानी मैं दूंगी पर अंग से अंग न लगे, ये वादा करो। वो कहता है वादा है, और वो उसे घाघर से पानी पिलाती है। वो पानी पीता है और चला जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है, पर उनको भी पता नहीं रहता, मां बाप शादी तय कर देते हैं। वो तो शादी होने के बाद जब वो आता है उसके सामने, तो वो उसको कहती है अपना वादा याद रखना, अंग से अंग ना लगे। देखना, दूसरा स्पर्श करना, संकल्प से और नजर से भी इस विकारी देह को स्पर्श करने का संकल्प नहीं करो। इसमें कोई सुख नहीं, कोई आधार बन जाए इसमें कोई सुख नहीं। किसी के साथ सारी बातें करना चालू करो, उसके साथ बातें करना कम हो जाएगा। व्यक्तियों के साथ शेयर करो अपनी प्रॉब्लम्स, उसके साथ शेयर करना आप पे ही कम हो जाएगा। तीसरा, संस्कृत शब्द है केली, केली अर्थात खेलना, स्त्री पुरुष साथ साथ खेलना। ये किसी और जमाने में लिखे गए थी बातें, पर आज के युग में एक और प्रकार का खेलना है, वो है मैसेजेस का खेलना, मोबाइल से खेलना। एक मैसेज इधर से, दूसरा मैसेज उधर से, एक व्हाट्सएप इधर से, दूसरा उधर से। हमने भेज दिया और उधर से आया ही नहीं कुछ, और इंतजार है आएगा आएगा आएगा, और नहीं आता है तो नाराज, दुखी, उदास, वो भाई ने अब तक जवाब क्यों नहीं दिया? कभी इधर से नाराज, कभी उधर से नाराज, कभी इधर से रूठना, कभी उधर से रूठना, फिर वो रूठ गया तो उसको मनाओ, क्योंकि अनन्य है, ऊपर सेवाएं है, नीचे भावनाएं हिलोरे ले रही है। इसके लिए सारे खेल ब्रह्मचर्य का खंडन है। बांधने वाले हैं, उड़ नहीं सकती आत्मा बंधने के बाद, चाहे कितना भी सहयोगी हो, कुछ भी हो। हमारा थोड़ी सहयोगी है, बाबा का सहयोगी है, हमारे लिए थोड़ी कर रहा है, बाबा के लिए कर रहा है। और वो नहीं भी रहा तो भी भगवान के हमें छोड़ देगा। चौथा, प्रशंसा, स्तुति। किसी की स्तुति करना अच्छी बात है, परंतु किसी एक व्यक्ति की अत्यधिक स्तुति करना कामकांक्ष है। सभी ने सुना होगा, जानकी दादी हॉस्पिटल में भी सुनाया था। दादी ने किसी का कोर्स कराया, भाई बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, और उसने बहुत ध्यान से सब सुना। दादी ब्रह्मा बाबा के पास गई और बाबा को कहा, बाबा ये भाई जो है ना बहुत पक्का है, ये भाई जो है ना इसको बिल्कुल सारी धारणा हो गई है कोर्स कराते कराते, बाबा ये भाई तो बहुत ही बढ़िया है, इसको तो एकदम तीर लग गया है। बाबा ने कहा, तीर उसको लगा या तुमको? तीर किसको लगा? कोई कितना भी बढ़िया होने दो, कोई कितना भी अच्छा होने दो, स्तुति करना अच्छी बात है, परंतु उसी को देख लेना कि यही वो कर सकता है, इसके जैसा और कोई दूसरा है ही नहीं, बस यही है, काम कांक्ष है। अत्याधिक स्तुति चाहे मन में कर रहे, चाहे दूसरों के सामने कर रहे। एक है मन के मन में स्तुति करते रहना किसी एक व्यक्ति की, मन ही मन उसके गुण गाते रहना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, इसका चिंतन बहुत अच्छा है, वो भी बंधन लाएगा। अच्छा है पर बनाया किसने? सुदेश दीदी उस दिन बता रहे थे, स्वयं को क्या समझो, नल समझो, टंकी ऊपर है, हम नल है, पानी ऊपर से आ रहा है, नल की क्या महिमा? पानी ऊपर से आ रहा है, पानी टंकी में है, हम खाली नल है, यहां से निकला। और यदि हम सोचे, देखो हमने इसको ये किया, ये ज्ञान में आ गया, ये आगे बढ़ रहा है, पुरुषार्थी बन गया, ये वो ये वो, इतनी प्रशंसा, क्योंकि जिसकी हम अधिक प्रशंसा करेंगे और उससे लगाव होगा, तो जब उसके विरुद्ध कोई कुछ कहेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे फिर। यदि उसको दुख तो हमको दुख, उसके साथ अन्याय जो दिख रहा है हमको लगेगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये, हम अस्वस्थ, हम हलचल में, क्योंकि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? उसके साथ किया, तुम शांत बैठो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको पता है उसने पिछले जन्म में क्या किया? पांचवा, गुह्य भाष्य। गुह्य भाष्य प्राइवेट टॉक्स, सीक्रेट कॉन्वर्सेशन, गोपनीय वार्तालाप। 3 मिनट से ज्यादा किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि वो सेवा के विषय में है और सेवा का समाचार की लेन देन है तो ठीक है, अन्यथा 3 मिनट काफी है, क्योंकि वो जो सीक्रेट शेयरिंग है उसमें बहुत सारी नए नए भावनाएं उमड़ आएगी, और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रात का समय तमो प्रधान होता है। हम कितने भी पवित्र है, सेंटर पर रहते, परंतु वो भाई संसार में रहता है, विकारी जगत में, टीवी खुला है दिन भर, घर में टीवी है, क्या देखता है, क्या करता है, किसको पता। वासनाएं सूक्ष्म है, छिपी है, कब प्रकट हो जाए पता नहीं। और फोन का वार्तालाप एकांत में, रात रात अंधेरे में, सीक्रेट टॉक्स, जो भी हमारी बातें हो वो इतनी खुली हो कि हमें चिंता ना हो कि कोई सुन ले, कोई रिकॉर्ड कर ले, उसका डर नहीं। ऐसा हमारा ट्रांसपेरेंट जीवन हो, जो हो वो है, बस ये है, छिपाने का इसमें कुछ नहीं है। और जहां छिपाना पड़े, जहां फटाफट मैसेजेस डिलीट करना पड़े, कोई देख ना ले ये डर है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो लगाव और झुकाव है। लंबा लंबा समय फोन पर बात करना, लंबा लंबा समय व्हाट्सएप पर रहना, लंबा लंबा समय सोशल मीडिया पर रहना, लंबा लंबा समय एक दूसरे से अत्यधिक मैत्री बढ़ाना, फैमिलियरिटी, शेयरिंग करना। क्या मतलब है शेयरिंग का? हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सद्गुरुवार, क्या अर्थ है इस मैसेजेस का? थॉट फॉर द डे भेज रहे हैं एक दूसरे को, क्या स्वयं हम धारण किए उस थॉट फॉर द डे को? फूल का चित्र भेज रहे हैं, जोक्स भेज रहे हैं, पॉलिटिक्स की न्यूज भेज रहे हैं, क्या अर्थ है इन सब चीजों का? नए नए ग्रुप्स बना रहे हैं, क्या अर्थ है इस ग्रुप्स का? क्लास सुनी, बहुत पावरफुल क्लास, क्या किया? फॉरवर्ड, नीचे लिख दिया मस्ट लिसन, सुनो इस क्लास को, बहुत पावरफुल है, पर हमने क्या किया? फॉरवर्ड। क्या सोचकर कि उसका कल्याण हो जाए? जिसके पास वो आई उसने सोचा ये और किसी को भेजता हूं, अब पावरफुल, उसने सामने भेजा, उसको लगा ये सेंटर पे जाना चाहिए, उसने सेंटर में भेजा, सेंटर वालों ने मेल करके किसी और को भेजा, बिचारी अनाथ वो क्लास घूम रही है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, मोबाइल से कंप्यूटर, कोई उसको सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि सब कहते हैं पावरफुल, भेजो, बहुत अच्छा है, भेजो। अरे तुमने सुनी क्या? अरे तुम कहां थे? दादी जानती का क्लास था, बहुत बढ़िया क्लास था, क्यों मिस कर दिया तुमने? आना चाहिए था। अच्छा क्या था क्लास में? वो मत पूछो अब, क्लास बहुत पावरफुल था पर क्या था वो मत पूछो। आए क्यों नहीं तुम? यही चालू है, इधर से उधर भेजना, उधर से इधर भेजना, इधर से उधर भेजना, उधर से इधर भेजना। हमने कितना धारण किया है? अधिकार नहीं है हमको किसी को भेजने का जब तक हम उसको धारण ना करें। सारा कचरा इधर से उधर, उधर से उधर जाते रहता है, अमृत वेला भी नहीं छोड़ते। अमृत वेला हुआ कि बस, इतने फास्ट किसी की उंगलियां काम करती है, बात मत पूछो, इतनी ट्रेंड हो गई है, दोनों हाथों से करते हैं फटाफट फटाफट। हॉस्पिटल में छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हम बॉक्सिंग बैंडेज लगा देते हैं, क्योंकि जो लाइन होती है ना वो हाथ से निकाल लेते हैं, तो उनके हाथ पूरे गोल गोल कर देते हैं, ऐसे बॉक्सिंग बैंडेज कहते हैं। हमको लगता है इसी की आवश्यकता है सबको, बॉक्सिंग बैंडेज लगा दो, हाथ अभी देखते कैसे टाइप करेंगे। गुह्य भाष्य, पहले बातें, फिर इमोशंस, फिर शेयरिंग, फिर यहां की बातें उधर, फिर सेंटर की बातें जो अत्यंत आंतरिक बातें हैं वो शेयरिंग, ये सोचकर कि शायद वो मदद करे। अरे वो क्या मदद करेंगे, उनको क्या पता? फोन का बिल, इंटरनेट का बिल, संकल्प, टाइम, सब वेस्ट। उतना ही टाइम बाबा के कमरे में बैठकर यदि बाबा से पूछा होता क्या किया जाए इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का, क्या वो भाई उत्तर देगा इसका, जो खुद अपनी समस्याओं में डूबा है? छठवा, संकल्प। संकल्प करना समीप जाने का, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। अभी गए नहीं है, संकल्प चालू हो गए हैं। कोई प्राइवेट जगह जहां पर बैठकर मिले, जितना हो सके एक नियम जो सभी सन्यासी और सन्यासिनियों के लिए है, विश्व भर में द्वापर से एकांत में ना मिले, क्योंकि इंद्रियों का फोर्स बहुत प्रबल होता है। महाभारत में उदाहरण है, धर्मराज से पूछा है एक जगह, क्या जब तुम अपनी मां कुंती के पास बैठते हो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? किससे पूछ रहे? धर्मराज, अर्जुन से नहीं, भीम से नहीं, नकुल सहदेव से नहीं, धर्मराज से। वो कहता है आई एम नॉट श्योर। और अंतर बैठने का, जितना दूर हो उतना ही अच्छा है। हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, हमारे संकल्प पवित्र है, परंतु इसकी कोई गारंटी है कि उनके संकल्प भी पवित्र है? या है पर नहीं रहेंगे, क्या इसकी गारंटी है? कुछ स्थूल नियमों की आवश्यकता है तो कुछ सूक्ष्म भी। और ये आकर्षण केवल भाइयों के प्रति ही नहीं, या बहनों के प्रति नहीं, भाई भाई का भी और बहन बहन का भी। मुरलियों में ये भी आया है, एक बहन का दूसरी बहन में आकर्षण, एक भाई का दूसरी। घूमने जाएंगे तो साथ ही घूमने जाएंगे, भोजन करेंगे तो साथ ही भोजन करना है। मधुबन में हमने एक बार दृश्य देखा था, दो बहनें बैठी थी, वो चम्मच से उसको खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी। प्यार, आपसी प्रेम, पर वो भी लगाव का रूप धारण करेगा। संकल्प समीप जाने का छठवा। सातवा संस्कृत शब्द है अध्यावसाय। अध्यावसाय अर्थात वास्तव में उस पुरुष या स्त्री के समीप जाना। पहले योजनाएं बनाना कहां मिलना है, और फिर वास्तव में जाना, ब्रह्मचर्य का खंडन है। और आठवा काम की क्रिया। ये आठ बातें हैं, इसमें से कोई एक भी बात एनी टाइम एनी प्लेस एनी सर्कमस्टांस, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में और किसी भी स्थान पर यदि होती है तो वो ब्रह्मचर्य खंडन हो रहा है। और जब ब्रह्मचर्य खंडन होगा तब ऊर्जा जो है वो नीचे बहेगी, शक्ति रूप नहीं बनेगी। हमें अपनी ऊर्जा को बचाना है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो नष्ट होती है कामुक विचारों से नष्ट होती है। रावण के 10 शीश में 5 स्त्री के और 5 पुरुष के दिखाए हैं, क्योंकि आत्मा भले अभी स्त्री के तन में है या पुरुष के तन में, परंतु जन्म जन्म सभी अलग अलग शरीरों में वो गई है। एक जन्मांध व्यक्ति जिसकी आंखें बचपन से नहीं है, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं है, वो भी काम विकार से मुक्त नहीं है। उसने तो देखा ही नहीं, उसको कैसे आया? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार यहां भरे हैं। तो ब्रह्मचर्य की ये 8 बातें हैं। अब क्या किया जाए, कैसे संपूर्ण ब्रह्मचर्य बना जाए, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डाइवर्ट। क्या करना है? एनर्जी को डाइवर्ट कर देना है। जो ऊर्जा नीचे बहती है उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देना। ज्ञान योग धारणा सेवा में स्वयं को इतना बिजी कर दो कि ये सारे विचार देह, कल की मुरली में था विस्तार, देह की स्मृति, देह का भान, देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये सब हमारा ध्यान ही बढ़ जाए, डाइवर्ट हो जाए, स्वयं को डाइवर्ट कर दो। दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था, क्या कहा आपको काम विकार नहीं सताता, आप सन्यासी हो, अकेले रहते हो, ब्रह्मचारी हो? वो कहता है सताता है, पर वो जब भी आता है दरवाजा खटखट करता है, मैं उससे कहता हूँ रुको मैं अभी थोड़ा बिजी हूं बाद में आना, और बेचारा रुक रुक के चला जाता है। जब भी पूछता हूं मैं कहता हूं मैं अभी बिजी हूं, क्योंकि इतना बड़ा काम करना है मुझे मानवता के लिए। जितनी अवेयरनेस होगी अपने कर्तव्य की, स्वतः ही हम बिजी रहेंगे। इतनी सारी मुरलियां क्या पढ़ के हो गई 69 से अब तक? क्या सब मुरलियों पर चिंतन हमने कर लिया? क्या धारणा स्वरूप बन गए? फिर कैसे शांति से बैठे हैं? भगवान कह रहा है समाप्ति का समय है ये। लक्ष्य को सामने रखना, अपने अटेंशन को डाइवर्ट कर दो, सेवाओं में अपने मन को लगा रो, वो सब आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं सेवाएं तो, परंतु हम जो बात कर रहे हैं वो है ज्ञान और योग, इन दो की थोड़ी सी कमी है। मुरली पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, कोर्स करना, कराना, वर्कशॉप करना, सेमिनार करना, लेक्चर देना, भाषण देना, प्रोग्राम करना, प्रोग्राम में भाषण देना, बाहर जाकर भाषण देना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान कुछ और है, ज्ञान अनुभव है। दूसरों को समझा रहे तुम आत्मा हो, परमधाम तुम्हारा घर है, क्या पर मैंने अनुभव किया है अपने घर का? 24 घंटे में कितना टाइम हम परमधाम में बिताते हैं? 5 मिनट, 5 सेकेंड, बहुत कम। डाइवर्ट। दूसरा है स्टॉप द लीकेज। जहां जहां लीकेजेस हो रही है वो सारे स्टॉप कर दो। कहां कहां गॉसिप्स, झरमोई झगमोई, ये सेंटर में क्या हो रहा है, वो सेंटर में क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये भाई क्या कर रहा है, वो भाई क्या कर रहा है, परचिंतन और परदर्शन, इसके साथ क्या, उसके साथ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, किसने क्या कहा और किसने क्या किया, तुमको क्या करना है? माइंड योर ओन बिजनेस। ये लीकेज है, जबरदस्त लीकेज। लोग यहां से जाते हैं मधुबन में, वहां जाकर वहां की माया में फंस जाते हैं। देखना ग्रुप मिल जाता है, साइट सीइंग का ग्रुप, भोजन का दूसरा ग्रुप, आज ये बनाएंगे, कल वो बनाएंगे, कल ये करेंगे, आए हैं तपस्या के लिए, सारी बुद्धि भोजन में, आए हैं तपस्या के लिए, सारी बुद्धि साइट सीइंग में, आए हैं तपस्या के लिए, सारी बुद्धि डिजिटल वर्ल्ड में, किसके पास मधुबन में कौन सा मोबाइल है, क्या कौन कर रहा है, और कौन से ऐप है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, सारी बुद्धि उसमें जा रही है, आए थे तपस्या करने। एक भाई अनुभव सुना रहा था एक रिट्रीट सेंटर का, किसी दूसरी जगह से कुछ ग्रुप आया छोटा सा, एक 5-10 लोगों का, तपस्या करने, रिट्रीट सेंटर बना है नया नया, तपस्या करने वो ग्रुप आया। शाम को पहुंचे, 1 घंटा बाबा के कमरे में गए, दूसरे दिन साइट सीइंग के लिए निकल गए, दिन भर में घूमे शहर भर, शाम को 1 घंटा, आधा घंटा बाबा को गुड नाइट किया, दूसरे दिन दोपहर तक घूमे, और फिर वहां से गए और सेंटर पर सुनाया 2 दिन भट्टी करके आए हैं। ये थी भट्टी, आए किस लिए थे और कर क्या रहे, ये देखूं वो देखूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, इससे मिलना है उससे मिलना है। मधुबन में जाते समय सारा बुद्धि में वही घूम रहा है, योग में भी ये इससे मिलना है उससे 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 मिलना है। वो मिलना अच्छी बात है, पर आए किस लिए थे? तपस्या करने। तपस्या तो हुई नहीं, नाम मात्र तपस्या हुई, दिखावे के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा, आडंबर और दंभ अध्यात्म में शत्रु है। किसको हम छल रहे हैं? आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं। योगी है, तपस्वी है, कहीं ये ढोंग तो नहीं? दुनिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और, लीकेजेस स्टॉप करो। यदि वो डिजिटल वर्ल्ड है उसके लीकेजेस, गॉसिप्स है, झरमोई झगमे है, उसको स्टॉप करो। टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कुछ भी है, व्यर्थ की बातें है, ट्रैवलिंग है जहां आवश्यक नहीं, हाँ सेवा के लिए आवश्यक है, परंतु व्यर्थ की ट्रैवलिंग कर रहे और खुद के शरीर को थका रहे। या फिर भोजन, दिन रात डूबे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात सारा जीवन किचन में बिताना तो नहीं है ना, यह है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, भारत में क्या हाल हो गया है धर्म का, भारत में रिलीजन किचन रिलीजन हो गया है और फूड देवता हो गया है, बस इसी का ही चिंतन करते रहते दिन रात। अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, अब क्या खाना है। स्टॉप द लीकेजेस। और तीसरी बात जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन अर्थात काम विकार का दमन नहीं करो, जितना दबाएंगे वो उछल कर बाहर आएगा। उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, स्पिरिचुअलाइज कर दो उसको, उसकी दिशा ही बदल दो। 29 दिसंबर 1979 अव्यक्त मुरली, 29 दिसंबर 1979, एकमात्र शायद ऐसी अव्यक्त वाणी है ये जिसमें बाबा ने कहा है विकारों को दबाओ नहीं। उदाहरण दिया है, अगर किसी राजा को हराया जाता है तो राजा बदला लेता है, इनका रूप बदल दो। काम विकार है उसको शुभ कामना में परिवर्तन कर दो। ऐसे पांचों ही विकारों को बाबा ने एक एक करके बताया है, इनका रूप बदल दो। बाकी सभी मुरलियों में हमेशा कहते हैं कि इसको खत्म कर दो, कामजीत बन जाओ, मुक्त हो जाओ, भस्म कर दो, विकार को नष्ट कर दो, ये सारा बातें आती है। पर ये एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा ये जो पांच विकार है यदि तुम इन्हें हराते हो तो वो बदला लेते हैं। जो कल भी कहा था, बीए का पेपर फिर एमए में आता है, जिसको जीत लिया था फिर से वो पेपर आता है। उसके बारे में उसको देखो, ये विकार है, क्रोध, आवेश, जोश, क्या मिला इससे, सुख या दुख, अवस्था कैसी रही, किसी को डांटने के बाद, किसी ने गलती कर दी, नुकसान कर दिया लाखों का, उसको इतना डांटा, हमारी स्थिति क्या रही और उसकी स्थिति क्या रही, कुछ मिला उससे। एनालिसिस, देखना साक्षी होकर, यही विधि है उनसे मुक्त होने की, उनको रूपांतरण कर दो, रूप ही बदल दो उसका। क्योंकि वैसा अगर नहीं किया जाए तो वो दब जाता है मात्र। एक आत्मा हमारे पास आई थी ओपीडी में, इतनी मोटी फाइल थी उसकी, डिप्रेशन, यहां दर्द, यहां वो, वहां वो, सारे रिपोर्ट्स, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, सब नॉर्मल, कहीं पर कुछ नहीं, पर बीमारी उसकी बहुत सारी। बाहर के एक डॉक्टर को भी दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को, उसने उसको डायग्नोसिस किया था, ब्रह्मा कुमारी बहन को, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर्स। जो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है रिपोर्ट्स में, पर तकलीफ बहुत है। जहां जहां दमन होगा वहां वहां सुनामी की तरह एक दिन निकलेगा, और फिर सामने का भाई केवल निमित्त होगा, सामने का व्यक्ति इच्छा पूर्ति का एक साधन, एजेंट मात्र होगा, जिसमें दमित भावनाओं को हम थोपेंगे। स्वयं को देखना है, कौन सी इच्छाएं तभी है ऐसी इच्छाएं, अगर है पहले स्वीकार करो, हाँ है, अब उस पर काम करो, है अगर इसे पूर्ण किया जाए क्या मिलेगा। क्या संसार की स्त्रियों को, उन माताओं को देखो, क्या उन माताओं में वह दिव्यता है जो एक ब्रह्मा कुमारी में है, एक पवित्र ब्रह्मा कुमारी एक तरफ और संसार की सारी माताएं चाहे ज्ञान में भी चल रही हो एक तरफ, क्योंकि विकारों की चक्की में पिसकर बाहर निकले हैं, यहां अनटच्ड है, बाल ब्रह्मचारिणी है। वो विकारों का अनुभव किया उसके बाद वैराग आया है, यहां जन्मजात वैराग। अगर ऐसा जीवन है और उसमें यदि ऐसी दमित भावनाएं हैं, उनको भस्म करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, समझना होगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि है। और है तो क्या करूं, अब दो मार्ग है, पूर्ति करूं, दमन करूं, या उससे परे निकल जाऊं। संसार में दो मार्ग है, एक भोग का एक त्याग का। जिन्होंने भोग किया वो भी उसमें फंसे रहते हैं, और जिन्होंने त्याग किया था वो भी उसमें फंसे रहते हैं। केंद्र स्त्री ही है, एक भोग, दूसरा उससे दूर जंगल में चला गया, पर ध्यान सारा इधर ही। एक सन्यासी था, 30 साल तक अपनी पत्नी को छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। 30 साल तक कथाएं की, प्रवचन किए, तपस्या की, हिमालय गया, सब कुछ किया। 30 साल के बाद एक दिन शिष्य खबर लाता है, आपकी जो पत्नी थी उसने शरीर छोड़ दिया। वो कहता है, झंझट छूटी। अर्थात अभी तक झंझट थी, अभी तक त्याग किया ही नहीं था, अभी तक पकड़े हुए था उसको। ये दमन है, सप्रेशन। सप्रेशन नहीं, सब्लिमेशन। जिस जिसने सप्रेशन करने की कोशिश की वो सभी विक्षिप्त हुए हैं। जो भी मार्ग है दमन के सारे संसार में, बाबा हमें दमन नहीं सिखाते। बाबा कहते हैं, देखो तुम जज करो, ये है, ये भाव है, ये भावना है, शुद्ध भावना है तो ये उसका रिजल्ट है, अशुद्ध है तो ये रिजल्ट है, देहभान वाला है तो ये रिजल्ट है, क्या चाहिए तुम डिसाइड करो। तो उदात्तीकरण, सब्लिमेशन ऑफ डिजायर्स, सारी जो इच्छा है सूक्ष्म उनको शुभ इच्छाओं में रूपांतरण, ये मार्ग है ब्रह्मचर्य का। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरी क्लास। ओम शांति।